ये कल बात हो गई थी व्रजन तिष्ठन पदेकेन यथा वा एकेन गच्छति यथा तृण जलूकेवम देही कर्म गतिम गता बताया ना 40 नंबर का श्लोक हो कि व्रजन तिष्ठन पदेकेन यथा वा एकेन गच्छति जो चलता है वो एक ही पांव से चलता है। एक पांव स्थिर होता है तब दूसरा पांव उठता है। इसी प्रकार से दृष्टांत कौन है ऐसा प्राणी है तो उसके लिए दृष्टांत दे दिया तृण जलूक। एक तृण जलूक होता है, कोई बोलते हैं जोंक है, कोई बोलता है कुछ है, कोई बोलता है कुछ है। जोंक भी ऐसी चलती है, अगला पकड़ लेती है तब पिछला पांव उठाती है, पिछला भाग उठाती है। इसी प्रकार से ये देह जो है कर्म गतिम गताहा, कर्म की गति को प्राप्त होता है। तो देह के प्राप्ति में सबसे बड़ी चीज क्या है जो देह प्राप्त होता है उसके लिए बोलते हैं स्वप्ने यथा पश्यति देहमिदृशं मनोरथेन अविनिविष्ट चेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि अपस्मृतिः। कहा मनसानुचिन्तयन्, मन जो है ना जो आप चाहते हो वो चिंतन नहीं करता। आप ये ध्यान रखना, आप सोचोगे कि भाई चलो जिंदगी भर इधर उधर के काम करते रहें और मरते समय भगवान की स्मृति आ जाएगी, तो ऐसा कभी सोचना नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, जन्म जन्म यत्न करते हैं तो भी मृत्यु काल में विस्मृति हो जाती है। हमारे यहां शास्त्रों में एक दृष्टांत देते हैं, भरत जी महाराज का जीवन अनंत ऐश्वर्य संपन्न था, अनंत ऐश्वर्य संपन्न, और उस ऐश्वर्य का त्याग उन्होंने किसी विपत्ति के कारण नहीं किया। भरत का जो चरित्र है पढ़ा होगा आप लोगों ने, विपत्ति के कारण नहीं किया और बहुत बुढ़ापे के भी कारण नहीं किया। जीवन में कोई बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई हूं इसके कारण भी नहीं किया, न जरा न व्याधि और न प्रतिकूल परिस्थिति, लेकिन संसार का स्वरूप देखते देखते चित्त में एक निश्चय हो गया कि इसकी तो गति ऐसी है। श्लोककार क्या कह रहे हैं जरा समझ लेंगे थोड़ा सा। दृष्ट श्रुताभ्याम, इसलिए जीवन में दर्शन और श्रवण का बहुत महत्व है। आंखों का और कान का, आंखों का और कान का बहुत महत्व है। आंखों के द्वारा जो आप देखते हैं और कानों के द्वारा जो आप श्रवण करते हैं, मन विवश हो जाता है उसका चिंतन करने के लिए। दृष्ट श्रुताभ्याम अनुचिंतयन, उसका चिंतन करने के लिए विस्मृत हो विवश हो जाता है। और फिर क्या होता है, जिस समय यह स्वप्न देखता है तो जागृत, देखो आप बहुत गहराई से विचार करें तो जागृत से स्वप्न बहुत गहरा है। सपने में जागृत की कोई बात याद नहीं रहती, लेकिन जागृत अवस्था में सपने की कई बातें याद रहती हैं। अपस्मृति बोलते हैं उसको, पूरी तरह से जागृत की विस्मृति हो जाती है, और जो शरीर आप धारण करते हैं, जो शरीर के साथ में, जिस अवस्था के साथ में आप तादात्म्य करते हैं, वही आप अपने को समझने लगते हैं। नहीं होता ऐसा सपने में, कुछ भी नहीं है। यदि आप सपने जागृत में अमीर हैं, सपने में गरीब बन गए, तो उस सपने का सुख या दुख अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब जागृत अवस्था की पूर्ण आपको विस्मृति हो जाएगी। यदि जागृत अवस्था की स्मृति रहेगी तो उसका पूर्ण अनुभव आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कहते हैं श्रुताभ्याम स्वप्ने यथा पश्यति दृशम अनुवृतेन अभिनिविष्ट चेतना। अब दृष्ट और श्रुत उसके अनुसार इसको क्या करते हैं, शरीर की प्राप्ति होती है, और शरीर की प्राप्ति हो जाने पर पूर्व की विस्मृति हो जाती है। उसके लिए 37 श्लोक कल थोड़ा मैंने बताया था, उसके लिए वसुदेव जी अपने मन में चिंतन कर रहे हैं। यतो धावति देव नोदितम मनो विकारात्मकम आप पंचसु गुणेशु माया रचिते सुदेही असौ प्रबद्यमान सत्य न जायते। कहते हैं दैवनोदितम, कल बात चली थी इसकी सहित, दैवनोदितम ये जितना है, ये दैव का अर्थ कर दिया प्रारब्ध, और भाष्यकारों ने भी किया कि पूर्व अदृष्ट पूर्व दृष्ट संस्कार होते हैं। कभी कभी आप देखो भरत जी महाराज की साधना में पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं है, लेकिन साधना के साथ साथ में जीवन में सावधानी भी चाहिए। साधना कभी कभी आदमी जबरदस्त करता है, लेकिन थोड़ी सावधानी नहीं होती तो बहुत बड़ी विचित्रता हो जाती है वहां पे। देखो जो उन्होंने मृग के बच्चे को बचाया, कोई पाप तो नहीं किया? कोई पाप किया क्या? लेकिन उस बच्चे के प्रति उनके मन में इतना मोह हो गया, संस्कृत में मोह शब्द जो बनता है ना, वो मोह वैचित्य धातु से बनता है, मोह वैचित्य से मोह बनता है। जैसे कोई ऐसी बीमारी होती है जो आंख की देखने की क्षमता को समाप्त कर देती है, इसी प्रकार से ये जो मोह है ये ऐसी बीमारी है कि चित्त के विचार करने की क्षमता को समाप्त कर देता है। मोह वैचित्ते चित्त को चिंतन से रहित चित्त को कर देता है, हो जाता है। तो वो उसके साथ में ऐसे लग्न हो गए और फिर उनको ये आभास हो गया कि कुछ समय के बाद ये शरीर नहीं रहेगा, तो इस मृग के बच्चे का क्या होगा? देखो जो इतना बड़ा भरा पूरा परिवार राज्य वैभव छोड़ के आया हो, और आप कभी नेपाल की यात्रा पे गए होंगे, गंडकी में कभी आपने स्नान किया? कितना भयंकर ठंडा पानी है उसका। एक राजा हो करके गंडकी के किनारे तप करता है, इतना जबरदस्त तप करता है, लेकिन एक महान आश्चर्य की बात है, जब मृग का बच्चा चला जाता है तो क्या, मैंने एक बहुत विलक्षण बात उस प्रकरण को पढ़ते हैं तो ये उनके चित्त के अंदर जो है वो मृग के बच्चे का चिंतन आ जाता है। मैंने कभी आपको बताया, एक बारी त्यागमूर्ति जी महाराज बता रहे थे कि हम कभी राजस्थान में कहते गए कहीं, और कोई भगत था उनका, ज्ञान यज्ञ में आता होगा, कई बार सुनता है ऐसा लगता है कि जैसे आप ही बैठे हो। बड़ा चिंतन करता था, बीमार हो गया, बहुत सीरियस हो गया, मृत्यु की अवस्था आ गई, तो महाराज जी कहते हम उधर किसी काम से गए होंगे। उधर जब पहुंचे तो उनका लड़का जो है उनको अपने घर में ले गया। तो महाराज जी से कहा, महाराज जी जरा इनके मुंह में गंगा जल और कान में कुछ कहिए। तो महाराज जी ने कहा कि राम राम बोलो। तो वो बोलता है चाबी ये क्या है, दृष्ट श्रोताभ्याम, क्योंकि अब तो ताले खुलेंगे नहीं हाथों से, और जो संपत्ति है उसका मालिक कोई और ही बन गया। लेकिन यतो धावति दैवनोदितम, जो पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ के जो संस्कार बन जाते हैं, जब आप इंद्रिय आपकी निष्क्रिय होती हैं, उस निष्क्रिय इंद्रियों में जो आपने दर्शन और श्रवण किया, जो आपके संस्कार बन जाते हैं, वो संस्कार स्वाभाविक रूप से बाहर निकलते हैं। इसलिए आप लोग बूढ़े लोगों को जरा सबके सामने आने नहीं देते। क्यों? बहुत असमर्थ हो जाए तो आपको लगता है न जाने इसके मुंह से क्या निकल जाए, क्योंकि उस समय निग्रह नहीं होता। और जब जिस समय निग्रह नहीं होता उस समय नया पुरुषार्थ भी नहीं होता। इसलिए दृष्ट श्रोता, जो देखा गया है, जो सुना गया है, उसी के संस्कार पड़ते हैं। अच्छा, इसी प्रकार कह रहे हैं वो, गुणेषु माया रचितेषु देही असौ प्रपद्यमान सहते न जायते। गुणेषु माया रचितेषु, माया गुणेषु रचितेषु, माया के गुणों के द्वारा रचित जो शरीर हैं, जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण हावी होगा, उसके द्वारा रचित जो शरीर होगा, उस शरीर के साथ में ही उसका तादात्म्य हो जाएगा। तादात्म्य मैंने यही मैं हूं वो मान लेता है उसको। वो तो भागवत में एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि भरत जी महाराज की साधना इतनी जबरदस्त थी, और ठाकुर जी का अनुग्रह भी था, साधना भी थी, भगवान के प्रति प्रेम भी था। तो जब उनको मृग शरीर की प्राप्ति होती है, तो मृग शरीर की प्राप्ति होने पर वो कहां रहते हैं मालूम है आप लोगों को ना? कहां रहते हैं? इतनी बारी भागवत सुन चुके हैं आप। पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में रहते हैं, कहते हैं वो आश्रम के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि वो मृग योनि के अंदर भी उनको स्मृति है। इससे बड़ा जगत में कोई पुण्य नहीं हो सकता महाराज। यदि आपको किसी शरीर में किसी शरीर की स्मृति हो जाए, तो वहां लिखा है कि उनको उस शरीर मृग योनि में भी उस पिछले जन्म की स्मृति है। उस आश्रम में ही वो रहते हैं, गंडकी नदी के किनारे, और शरीर को छोड़ने की कोशिश नहीं करते। इसी का नाम है जो शास्त्रकार कहते हैं, मीमांसा अलग कहती है या वेदांत अलग कहता है, प्रारब्ध कर्मणाम भोगाद एव क्षया। जो प्रारब्ध कर्म है उसका भोग से ही क्षय होगा। और फिर वो प्रारब्ध कर्म का भोग से जब क्षय हो गया, मृग शरीर समाप्त हो गया, और मृग शरीर समाप्त हो जाने के बाद उनको जड़ भरत के शरीर की प्राप्ति होती है। तो देखो यह क्या बता रहे हैं, गुणेषु माया रचितेषु देही असौ। वो जो माया का गुण, तो जो जिस माया के गुण से मृग का शरीर रचा गया, वो तमोगुण है। उसी तमोगुण के साथ में, तमोगुण से रचित जो शरीर है, उस शरीर के साथ में देही का तादात्म्य हो गया। फिर उसी के बाद सत्वगुण से रचित जो ब्राह्मण का शरीर है, प्रपद्यमान असौ, फिर उसी का तादात्म्य किसके साथ में हो गया। लेकिन वहां तादात्म्य होने का मतलब मानते तो अपने को वही थे ना, उसी शरीर के साथ में एकता हो गई। लेकिन अब जो है शरीर के साथ में बिल्कुल भी लगाव नहीं है। आगे बता, चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे क्या कहते हैं, ज्योति यथा उदक पार्थिवेशु अदस समीर वेगमनुगतम विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेशु असौ पुमान गुणेशु राग अनुगत विमुह्यति। उदाहरण दे रहे हैं बड़ा सुंदर, जैसे जल है और जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, है? ज्योतिर्यथा उदक, उदक माने जल, उस जल जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा और समीर बेगम, समीर किसको बोलते हैं, वायु के लिए, और हवा के वेग से पानी हिला और पानी के हिलने से वो सूरज भी हिलता हुआ, चंद्रमा भी हिलता हुआ दिखाई देता है, जो नहीं हिलता वो भी हिलता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार से इस विकारवान देही देह, विकार मैंने तालाब के स्थान में तो हो गया क्या शरीर, और आत्मा के स्थान में हो गया सूर्य, उसमें कोई क्रिया नहीं है। लेकिन समीर वेगेन वायु के वेग से जब जल हिलता है तो जल के हिलने से ऐसा मालूम पड़ता है कि सूर्य हिलता है। इसी प्रकार से एवं स्वमाया रचितेषु असौ पुमान गुणेषु, माया के गुणों से रचित जो शरीर है रागानुगतो, उनके प्रति उसका क्या हो जाता है, राग हो जाता है, और शरीरों की प्रतिक्रिया जो है वो आत्मा में दिखाई देने लगती है। ताला पानी की जो प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रिया, देखो किसी भी हालत में सूरज हिलता नहीं है लेकिन सूरज हिलता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार से किसी भी हालत में आत्मा में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, लेकिन माया से रचित शरीरों के साथ में तादात्म्य होने के कारण ये सब होता है। दसम स्कंद में है, इतनी कठिन कठिन बातें लिखी हैं। इसलिए अब ये वसुदेव जी महाराज विचार कर रहे हैं, तस्मात् न कस्यचित् द्रोहम् आचरेत स तथा विदः आत्मना क्षेमम् अन्विच्छन्न ध्रुवै परतो भयम्। कहते हैं तस्मात्, इसलिए इस सत्य को जानने के बाद, तस्मात का मतलब ये प्रथम श्लोक में जो बात आई उस सत्य को जानने के बाद, आत्मनः क्षेमम अन्विक्षन, जो अपना कल्याण चाहते हैं, आत्मनः क्षेमम अन्विक्षन, जो अपना आत्म कल्याण चाहते हैं। देखो आप लोग भी बहुत दिनों से जब शास्त्र श्रवण करते हैं तो शास्त्र श्रवण करने दृष्ट श्रोताभ्याम श्रवण करते 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 आपके मन में अपने आत्म कल्याण की इच्छा हो गई, ये तो बड़ी बात है आत्म कल्याण की। तो जो आत्म कल्याण चाहते हैं उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या साधन अपनाना चाहिए, वसुदेव जी महाराज कहते हैं कस्यचित् द्रोहम न आचरेत, सबसे पहले किसी के प्रति चित्त में द्रोह नहीं रखना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए। गीता आपने पढ़ी होगी, वहां पे भक्त का जो लक्षण बताया ना, यहीं पे आत्मा का कल्याण चाहने वाला का भी लक्षण वही बता रहे हैं। गीता में भगवान ने भक्त का लक्षण बताया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। और हमने आपको दृष्टांत दिया था, आपको याद होगा। तो आप कभी भोजन करते हैं बड़े प्रेम से, और थोड़ी असावधानी हो जाए तो जीभ कट जाती है, हाँ, और जीभ में खून निकल गया तो आप दांत नहीं तोड़ते अपना, क्योंकि आपको मालूम है कि जीभ के कटने से जो दुखी हुआ मैं दुखी हुआ, दांत के टूटने से भी मैं ही दुखी हूंगा, क्योंकि जीभ में भी मैं हूं। इसी प्रकार से जो आत्मज्ञानी पुरुष होता है, जो आत्मज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं अभी, जो आत्मा का कल्याण चाहता है, जो साधक है, परमार्थ के पथ का जो पथिक है, उसको सबसे पहले अपने चित्त से किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ये वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं, आत्मना क्षेमम अन्वीक्षन न कस्यचित् द्रोहम आचरेत, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। और कहते हैं स तथा विदः, जो इस प्रकार से करता है, विदः वै द्रोग्धुम परता भयम्, फिर उस व्यक्ति को दूसरे से भय नहीं होता। धीरे धीरे देखो, उपनिषद के अंदर भी आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है तो उसका लक्षण क्या बताया है, अभयम प्राप्तोसि वै जनकः। आत्मज्ञान यदि आपको हो गया तो आत्मज्ञान का एकमात्र लक्षण यह है कि उसके जीवन से भय की निवृत्ति हो जाती है। और परीक्षित का भी अंतिम में यही बताया, सुखदेव जी महाराज ने जब उनको आत्मज्ञान हो गया तो वहां पर भी यही बताया कि आप अब सुनना चाहते हैं कुछ, उन्होंने कहा अब नहीं, एक तक्षक नहीं 50 तक्षक आ जाएं, मुझे काट दें, लेकिन मुझे अब भय नहीं है कि जिस अमृत की मुझे तलाश थी वो अमृत तत्व जो है मेरे अंदर ही ब्रह्मा हम परम धाम, ऐसा करके उन्होंने वहां कहा है भागवत के अंदर, अब मुझे किसी तक्षक का भय नहीं है, इस प्रकार से उन्होंने कहा। अच्छा, अब लेकिन सामने जो परिस्थिति है, बुद्धिमान व्यक्ति को उस परिस्थिति के बारे में क्या करता है, देखो देखो, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, तो परिस्थिति जब सामने विचित्र परिस्थिति आती है उसका समाधान वो अपनी बुद्धि से निकालता है। भगवान ने गीता में एक बड़ा सुंदर वाक्य है, युद्धस्व विगत ज्वरः। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, वो समस्या को दुकान दिमाग में लाता है, और ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, जैसे गाड़ी खराब हो गई तो जो गाड़ी का मालिक होगा वो तो परेशान होता है, लेकिन जो मिस्त्री होता है वो क्या करता है, अपने हथियार वथियार लेके जाता है, जितनी गाड़ी ठीक हो गई गाड़ी को वहां छोड़ के आता है, गाड़ी को अपने दिमाग में नहीं लाता, जितनी समस्या का समाधान हुआ उतना समाधान करता है, और फिर घर में आकर के उसको खूब नींद आ जाती है, फिर जाकर के दूसरे दिन फिर जाता है समस्या को सुलझाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं युद्धस्व विगत ज्वर, युद्ध करो, समस्या का समाधान करने के लिए बुद्धि वहां ले जाओ, लेकिन हमारी आदत ऐसी है कि हम सारी समस्याओं को बुद्धि में ले आते हैं, रात को अच्छी तरह से नींद भी नहीं आ पाती। ऐसी स्थिति तो तभी हो सकती है, या तो आप कृष्ण का चिंतन करें, या तो आपके ऊपर कृष्ण की कृपा हो जाए और कृष्ण का ज्ञान हो जाए। ऐसा बोलते हैं जब कृष्ण का ज्ञान, महाभारत में कहते हैं जब भीष्म ने प्रतिज्ञा किया कि कल मैं किसी पांडव को मारूंगा, तो कहते हैं पांडवों के जो पक्ष था उस पक्ष में शोक की लहर दौड़ गई, मरने के पहले शोक किया, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा बड़ी विचित्र है। अर्जुन उस समय घर में नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण आए हुए थे। कृष्ण भी अपने चरित्र से दिखाते हैं कुछ, तो सब पांडव बैठे हुए थे, कृष्ण आए तो कृष्ण को ऐसा लगा कि जैसे बहुत टेंशन में है। कौन? हाँ कृष्ण, कृष्ण बहुत टेंशन में, जो कमरे का बरामदा था उसमें टहल रहे हैं, पसीने की बूंदे हैं और टहल रहे हैं, पीताम्बर फहरा रहा है और टहल रहे हैं वो। अर्जुन इतने में कहीं बाहर से आया और अपने कमरे में गया, सो गया। ऐसा कहते हैं अर्जुन को नींद आ गई बहुत गहरी, इतनी गहरी नींद आई सो गया वो। तो भीम ने देखा कमरे में गया और बाहर नहीं निकला, तो उसने दरवाजा खटखटाया तो देखा वो सो रहा है। कौन? अर्जुन। तो उसने उसको जोर से पकड़ा था, उसको क्या पागल, तेरे को पता है कल क्या होने वाला है? तो अर्जुन ने एक बहुत अच्छी बात कही, अर्जुन नींद कैसे आ गई तेरे को, भीम ने पूछा। उसने कहा जब देख, जब ये चिंता कर रहा है तो तेरे को चिंता करने की क्या जरूरत है, देख जो सभी चिंताओं से मुक्त व्यक्ति को कर देता है, और वो जब चिंता कर रहा है तेरी, तो फिर तेरे को चिंता करने की क्या जरूरत है। नींद तो तभी आती है जब भगवान के महात्म्य का बोध होता है, जब तक भगवान के महात्म्य का बोध नहीं होता तब तक तो आदमी बिना मतलब टेंशन लिए रहता है। लेकिन मनुष्य को मृत्यु को टालने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या कहते हैं वो, अब कंस के साथ में इतना तो अपने मन में सोचा उन्होंने, किसने? वसुदेव जी ने। अब कंस के पास में जाकर के क्या कहते हैं देखो, ये सा तबानुजा बाला कृपणा पुत्री को उपमा हम तुम नारस्य कल्याणी इमाम तुम दीनवत सलाहा। उन्होंने कंस के सामने प्रार्थना करते हैं, कौन? शास्त्रों में एक बात लिखा है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसमें अकड़ नहीं होती। आपको समझाते हैं कभी कि दांत पहले आते हैं कि जीभ पहले आती है? जीभ पहले आती है। और जीवन का सारा स्वाद जीभ लेती है कि दांत लेते हैं? जीभ लेती है। पहले टूटते कौन है? दांत। क्योंकि दांतों में अकड़ बहुत है और जीभ के अंदर लचीलापन है, और खाली लचीलापन नहीं है, इसमें दया भी बहुत है। लगता है आपको जीभ में दया है? दांत में कुछ भी फंस जाएगा ना, तुरंत निकालने के लिए पहुंच जाती है। दूसरे के दुख से जो व्यथित हो जाए उसी का नाम तो दया है, निकालने के लिए तुरंत पहुंच जाती है, इतनी दया उसके अंदर है। तो कहते हैं, वो कह रहा है, ये सा तबानुजाहा, हे कंस, क्योंकि आगे बताएंगे चले जो कभी सुनेंगे आप, ये कृपणा, कृपण शब्द का अर्थ यहां किया दीन, बहुत दीनहीन है, पराधीन है ये। वैसे बृहदारण्य का अर्थ में तो कृपण शब्द का अर्थ अलग कर दिया, एतद अक्षरम अविदित्वा गार्गी या अस्मात लोकात प्रेति सकृपणा, वहां अर्थ किया बृहदारण्य में। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, एतद अक्षरम अविदित्वा गार्गी या अस्मात लोकात प्रेति, प्रेति मैंने मर के जाता है, कृपण में और दरिद्र में फर्क है। दरिद्र के पास में कुछ नहीं होता इसलिए वो दुखी रहता है, और कृपण के पास में सब कुछ होता है तो भी वो दुखी रहता है। सब कुछ है, कृपण का अर्थ होता है जो अपनी संपत्ति का उपयोग अपने सुख के लिए नहीं करता, उसका नाम कृपण है। तो सबसे बड़ा जो सुख यदि कोई है तो सुख क्या है, रावण ने लिखा है, शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। सुख वो है जब आदमी सृष्टा से जुड़ता है, सुख वो है जब आदमी ऐश्वर्य से विमुख होकर के ईश्वर के चिंतन की तरफ लगता है, उसका नाम सुख है। तो संपत्ति क्या है? एक तो सठ संपत्ति है, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति यह मनुष्य शरीर है। और सुख क्या है? ऐश्वर्य का सुख भोग हो गया, और ईश्वर का सुख क्या हो गया? ईश्वर का जो सुख है वो सुख हो गया। अभी यदि आप लोग किसी होटल में बैठ करके फाफड़ा जलेबी खाते रहते हैं, तो ये संपत्ति का उपयोग भोग है। और यदि यहां प्रेमपुरी में आकर के आप बैठ के सुन रहे हो, ये जो सबसे बड़ा ऐश्वर्य है भगवान का दिया हुआ, इस ऐश्वर्य का उपयोग क्या है? अपना सुख। अपना सुख का मतलब ईश्वर को पाने की चेष्टा। तो सुख जो है, इसलिए कहा है, यो वै भूमा तत्सुखम यदल्प्यम तद्मर्त्यम नाल्पे सुखमस्ति। कृपण का अर्थ हो गया, जो अपनी इस संपत्ति का उपयोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं करता, उसी का नाम क्या है? कृपण। इसलिए याज्ञवल्क मैत्री उसको गार्गी को कहते हैं, एतद अक्षरम अविदित्वा गार्गी। ये गार्गी, वो जो उस परमात्मा को जाने बगैर मर जाता है, वही कृपण है। क्योंकि अपनी संपत्ति का उपयोग सच्चे सुख के लिए नहीं किया। और एक बात आप ध्यान रखना, संपत्ति का उपयोग आप करो या न करो, उसके तीन ही गति हैं, दानम भोगम नाशम च। तीन गति हैं, जो गति आपको करनी है वो आप करिए। लेकिन यहां पर कृपण, कृपण शब्द का अर्थ क्या है? दीनहीन, पराधीन। अच्छा, पुत्री को उपमा, वसुदेव जी कहते हैं ये तुम्हारी पुत्री के समान है। हंतुम नारसी कल्याणी इमाम तुम दीन वत्सला। और साथ में कंस की प्रशंसा भी करते हैं, क्या? दीन वत्सला, आप तो दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं। देख लीजिए महाराज, कैसा कैसा जब परिस्थिति आती है तो कैसे कैसे क्रूर आदमी को दीन वत्सल शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। शास्त्रों में लिखा है, कार्यम साधयति धीमान। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो एन केन प्रकारेण अपने कार्य को साथ देता है। चलो, इतनी बात तो वसुदेव जी को हो गई। कितने 45 श्लोक हो गए ना। अब 46 नंबर के श्लोक को सुखदेव जी महाराज प्रारंभ करते हैं। अब सुखदेव जी महाराज बैठे बैठे उस दृश्य को देख रहे हैं। ऋषि हैं, दृष्टा हैं। अब देख रहे हैं वो कि वसुदेव और कंस के बीच में क्या हो रहा है। इसलिए योगी अतीत को भी वर्तमान में देखता है और भविष्य को भी वर्तमान में देखता है। है योगी, अब वो उस अतीत को वर्तमान में देख रहे हैं तो क्या बोलते हैं? देखो, एवं साम अभी देवै बुद्धिमान अभी दारुणः नन्यवर्त्यत कौरव्य पुरुषात् अननुव्रतः। हे कौरव्य, कौरव्य नाम किसको बोलते हैं? कुरुवंश में उत्पन्न होने वाले परीक्षित, उनका सारा ध्यान केंद्रित परीक्षित पे है। वक्ता के लिए इशारा कर रहे हैं, वक्ता का सारा ध्यान श्रोता के ऊपर होना चाहिए। श्रोता सो तो नहीं रहा कहीं? सो तो नहीं। कौरव्य, हे गुरुश्रेष्ठ, वसुदेव जी महाराज ने समान नीति से उसको समझाया। समान नीति से, सामान्य नीति, इसको बोलते हैं साम। इस साम नीति से समझाया उसको। लेकिन पुरुषाद अनुवर्तता, पुरुषाद अनुवर्तता मतलब राक्षसों का अनुवर्तन करने वाला, नन्य वर्तत, वो राक्षसों का अनुवर्तन करने वाला है, इसलिए बहुत समझाने पर भी वह व्यक्ति नहीं मानता। राक्षसों का अनुवर्तन, देवों का अनुवर्तन करे तो समझाने पर समझ जाता है, लेकिन जो राक्षसों का अनुवर्तन करता है वो अपनी बात को हमेशा पकड़ के रखता है, उसको लगता है मैं ही सच्चा हूं अभी। और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? इसमें लिखा है योग वशिष्ठ में, युक्ति युक्तम उपादेयम बालकादपि। श्रेष्ठ व्यक्ति वो है, युक्ति युक्त बात यदि कोई बालक भी कहे उस बात को भी व्यक्ति को ग्रहण कर लेना चाहिए। अब बोलते हैं, निर्बंधम तस्यतम ज्ञात्वा विचिंतयन आनक दुंदुवी प्राप्तम कालम प्रतिव्योडुम इदम तत्रानुपद्यता। अब उन्होंने सोचा, निर्बंधम तस्यतम ज्ञात्वा, उस कंस का निर्बंध मैंने हट, निर्बंध बोलते हैं हट के लिए, उसको समझ लिया कि कंस जो है बहुत हटी है। दुनिया में सबसे ज्यादा हटी यदि कोई व्यक्ति होता है, देह अभिमानी व्यक्ति होता है, और सबसे सरल यदि कोई व्यक्ति होता है तो ज्ञानी होता है, जिसका देह से अभिमान समाप्त हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में इतनी सरलता होती है कि भगवान शंकराचार्य के बारे में आता है, एक बार कोई ये जो कपाली होते हैं ना, कपाली, उसको शंकराचार्य के प्रति द्वेष हो गया। शास्त्रों में लिखते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब ये नहीं है कि जिससे कोई शत्रुता ना करता हो, लेकिन वो किसी से शत्रुता नहीं करते, इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज का नाम है क्या? अजात शत्रु। लेकिन दुर्योधन तो उनसे बहुत शत्रुता करता है। किसी ने कहा दुर्योधन से, कोई अच्छा आदमी ढूंढ के ले आओ, वो ढूंढ ढांड के आ गया, बोले कोई कोई मिला कि नहीं? बोले कोई नहीं है। बोले युधिष्ठिर मिला? अरे वो कोई अच्छा आदमी है, युधिष्ठिर से बोला कोई बुरा आदमी ढूंढ के ले आओ, वो बोला कोई मिला नहीं, तो बोला दुर्योधन नहीं मिला। अरे बोले दुर्योधन कोई बुरा आदमी थोड़ा ही है। महाभारत में युधिष्ठिर जी महाराज ने दुर्योधन के लिए हमेशा सुयोधन शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो जानते हैं कि आदमी प्रारब्ध के अधीन जीता है, और प्रारब्ध के अधीन जीने वाला व्यक्ति, अरे जो व्यक्ति स्वयं अपना बुरा करता हो, हम स्वयं अपने नरक की व्यवस्था कर रहे हैं, हम स्वयं समझदार कैसे हो सकते हैं? ये तो हम अज्ञानी हैं, ज्ञानी मानते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा, ज्ञानियों की भाषा बोलता है लेकिन है अज्ञानी, इसलिए बोलते हैं। उन्होंने कहा प्राप्तम कालम प्रतिव्योडुम, इस काल को थोड़ा सा टालना चाहिए। और फिर वसुदेव जी महाराज अपनी बुद्धि में विचार करते हैं, तो देखो ये भागवत का महत्वपूर्ण श्लोक है 48 नंबर का। मृत्युर्बुद्धिमताम अपोहो यावद बुद्धिबलोदयम यदि असौ न निवर्तेत नापराधो अस्ति देहिना। बुद्धिमान व्यक्ति को बुद्धिमतम, मृत्युम अपोह, मृत्यु को टालने की कोशिश करनी चाहिए। कल मैंने आपको थोड़ी सी इशारा किया था इस बात का लिया। वसुदेव जी विचार कर रहे हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है, जीवन कुछ और नहीं, जीवन परमात्मा ही है। कहां मंदिर में परमात्मा को ढूंढते हो? परमात्मा तो स्वयं तुम्हारे जी, क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा जीवनम सर्वभूतेषु, मैं सब भूतों में किस रूप से हूं? जीवन रूप से हूं। तो आपके अंदर भी वो परमात्मा जीवन रूप से विद्यमान है। इसलिए बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को मृत्यु को टालने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं कल आपको थोड़ा सा कब तक करनी चाहिए, यावद बुद्धि बलोदयम, जब तक दिमाग काम करे और जितनी आदमी के पास में शक्ति हो। बुद्धि और बल, जब तक आपकी बुद्धि, जितनी आपके पास में बुद्धि है उसकी कोशिश करनी चाहिए बचाने की, और जितने आप में शक्ति है तो ज्ञान और शक्ति का उपयोग करना चाहिए जीवन को बचाने के लिए। ये कौन बोल रहा है? वसुदेव जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, यदि असौ न निवर्तेत, और बुद्धि और बल का प्रयोग करने के बाद भी यदि मृत्यु निवृत्त नहीं होती तो ना अपराधो अस्ति देहिना, फिर उस समय फिर प्राणी का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि अपराध महसूस नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने ये दवाई करते तो शायद बच जाता, ये करते तो शायद बच जाता, सब कुछ करने के बाद भी नहीं बचा तो ना अपराधो अस्ति देहिना, फिर वो देही का कोई अपराध नहीं है। ये अपने मन में विचार कर रहा है कौन? वसुदेव। हमने कल थोड़ा आपको इशारा किया था कि महाभारत का जो परीक्षित है वो मृत्यु से बचने की बहुत कोशिश करता है, आपने सुना होगा, इतनी कोशिश करता है कि ऐसा लिखते हैं, आपने सुना होगा, सी स्मेल बनाता है, बहुत कोशिश किया लेकिन फिर भी मृत्यु से बच नहीं सका। और भागवत का परीक्षित वो क्या करता है? लेकिन देखो आप, भागवत जो है वो पुराण है और महाभारत इतिहास है। इतिहास वही होता है जो सच्चा है, और पुराण एक यथार्थ की कल्पना होती है। भाग वो ऐसा, महाभारत का परीक्षित अलग ढंग का हो गया और भागवत का परीक्षित ऐसा हो गया जैसे जिसे कैंसर की बीमारी हो और कैंसर चौथी स्टेज पे पहुंच गया हो और टाटा के हॉस्पिटल में भर्ती है और बड़ा डॉक्टर आके बोलता है अब इसको घर ले जाओ आप, इसका अर्थ क्या हुआ? अब कोई उपाय नहीं है बचने का, मृत्यु निश्चित हो गई। तो भागवत का परीक्षित जो है वो मृत्यु को निश्चित समझ लेता है। अब जब निश्चित हो गई फिर कोई दूसरा उपाय करने की, अब उन्होंने समझ लिया यहां पर कुछ उपाय हो सकता है, तो क्या कहते हैं वो जरा समझ लीजिए थोड़ा सा। अब वो कंस के साथ में जरा वार्तालाप कर रहे हैं, देखो ये कितना बड़ा पुण्य आत्मा व्यक्ति है, और एक मजबूरी के समय एक इतने पाप आत्मा के साथ में गिड़गिड़ाना पड़े, इसका नाम है कार्यम साधयति धीमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कार्य को साध लेता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए उसके पास जाने से क्या होगा, उसके पास जाने से क्या होगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपना कार्य साध लेता है, कार्यम साधयति धीमान, बुद्धिमान व्यक्ति कार्य बिगाड़ता नहीं है, कार्य को साध लेता है। क्या बोलता है देखो, प्रदाय मृत्युवे पुत्रान मोचये कृपणाम इमाम सुतामे यदि जायेरन मृत्युर्वा नम्रियेत्चेत। बड़ी सुंदर बात कहता है, ये हम लोग सत्संग में करते हैं तभी सुन सकते हैं, सप्ताह आदि में इतनी बारीकी से हम लोग सुन नहीं सकते क्योंकि समय नहीं होता वहां पर, और सत्संग में करते हैं तो एक एक श्लोक हम लोगों को श्रवण करने के लिए मिल जाता है। मृत्युवे, यहां पर लिखा है टीकाकार ने, कंस ही मृत्यु रूप है, मृत्यु रूप कंस कहा, मृत्यु रूप जो कंस है पुत्रान प्रदाय, अपने मन में अभी विचार कर रहे हैं कि मैं उस कंस रूप मृत्यु को अपने पुत्र को दे दूंगा, और उसको कहा इमाम कृपणा मोचये, इस बिचारी को तुम छोड़ दो। यदि जाए रन, और क्या पता है, अपने बोलते हैं गुजराती में कहावत है, न जाने जानकी नाथ सवारे, मूल वो रामायण में ऐसा है, न जाने जानकी नाथ प्रातर किम सम भविष्यति, भविष्य के गर्भ में क्या है ये कोई नहीं जानता। यदि कहते हैं, वो कहते हैं यदि मेरे पुत्र होंगे तो क्या कह सकते हैं, जाए रन यदि होंगे तो, और चेत मृत्यु वा नम्रियेत, और हो सकता है कंस की मृत्यु हो जाए, नम्रियेत वो न मरे, इस प्रकार कहता है। और आगे कहते हैं एक 50 नंबर का श्लोक भी जरा समझने लायक है, विपर्यो वा किम न स्याद् गतिर्धातुर दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत। क्योंकि भागवत में एक श्लोक ऐसा भी आता है, तद रक्षितम वने सुरक्षितम तद हतम गृहे विनश्यति, तद रक्षितम वने सुरक्षितम, वो जिसकी रक्षा करता है वो सुरक्षित होता है जंगल में भी, तद हतम गृहे विनश्यति, और उसका मारा हुआ घर में भी मर जाता है। आईसीयू में भी कितने मर जाते हैं, तद हतम क्या बोलते हैं, इस श्लोक जरा ध्यान से थोड़ी देख लीजिए, विपर्यो वा किम न स्यात्, विपर्य बोलते हैं विपरीत के लिए, ठीक इसके विपरीत भी हो सकता है। क्यों, गतिर्धातुर दुरत्यया, क्योंकि विधाता की गति को आज तक कोई नहीं समझ सका। दुरत्यया, यदि किसी की गति अत्यंत दुरत्यय है तो विधाता की गति अत्यंत दुरत्यय है, कोई नहीं समझ सका। क्या है उसका, उपस्थितो निवर्तेत, जो श्लोक छोटा सा आता है जरा आपको सुना दूं, मैंने कभी बताया ना आपको वो कबूतर और कबूतरी का कथा, तो वो जो कबूतर और कबूतरी की कथा बताई, वो पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, वो सांप को बाहर निकाल देते हैं पानी से, उपस्थितो निवर्तेत, तो कहते हैं नीचे एक बहेलिया आता है, वो जाल बिछा देता है और एक तरफ धनुष बाण को लेकर के खड़ा हो जाता है, और ऊपर जो है बाज आ जाता है। अब वो कबूतरी कबूतर से कहती है कि चलो अपने बच्चों के पास उड़ते हैं, तो जब उड़ने की कोशिश करते हैं तो ऊपर देखा बाज, इस तरफ देखा जाल, और इस तरफ देखा बहेलिया, तो मृत्यु आ गई कि नहीं। इत्थम तौ यमालयम प्रतिगतौ, और वो जब मृत्यु आती है तो वो कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं, तो कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं, तो आगे पीछे जाते में उस बहेलिए का पांव सांप की पूंछ पे पड़ गया, सांप ने बहेलिए को डस दिया और उसके हाथ से बाण छूटा और बाण से वो बाज मर गया। उपस्थितो निवर्तेत, जो मृत्यु उपस्थित हो गई थी वो निवृत्त हो गई, और जिसकी मृत्यु निवृत्त हो गई थी वो पुनरापतित, वो वहां पर आ गई, ऐसा वसुदेव जी महाराज कहते हैं। अच्छा एक श्लोक और कर देता हूं थोड़ा सा, अग्नेर्यथा दारु वियोग संयोग यो अदृष्टता अन्यत न निमित्तम अस्ति एवं ही जंतो अपि दुर्विभाव्यम शरीर संयोग वियोग हेतु। जैसे कभी जंगल में आग लग जाती है, अग्निर्यथा दारु वियोग योगयो, और जब जंगल में आग लग जाती है तो सब पेड़ पौधे सब जल जाते हैं, उसके प्रति कोई अग्नि से जल जाए और कोई बच जाए, इसके प्रति अदृष्ट के सिवाय कोई हेतु नहीं है। क्या हेतु है? अदृष्ट के सिवाय। इसी प्रकार से ये जो जंतु जंतु मैंने प्राणी शरीर हम लोग सब जंतु शब्द का प्रयोग किया, एवं ही जंतुरपि दुर्भाव्यम शरीर संयोग वियोग हेतु। ये शरीरों की प्राप्ति, शरीरों का प्राप्त होना और शरीरों का छूटना, इसके प्रति अदृष्ट ही हेतु है, प्रारब्ध हेतु है। कौन बोलता है ये? हाँ, लेकिन प्रारब्ध हेतु है ये मान करके आदमी को कभी भी अपने पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, पुरुषार्थ तो व्यक्ति को जबरदस्त पुरुषार्थ करना चाहिए, और काम तो अदृष्ट ही करता है, और कभी कभी ऐसा समझना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध में भी पुरुषार्थ करना लिखा हुआ है, प्रारब्ध में भी पुरुषार्थ करना लिखता है, तो उस प्रारब्ध के वसात ही आदमी के अंदर शरीरों का संयोग होता है और शरीरों का वियोग होता है, शरीर और वियोग। इस प्रकार से अभी तक जो बात चल रही है, एवं विमर्श्य तम पापम यावत आत्मन निर्दर्शनम पूजयमास भय शौरी बहुमान पुरस्सरम। इस प्रकार से अपने मन में बहुत विचार करके कंस का वो बहुत सम्मान करते हैं, और कंस का सम्मान करने के बाद फिर आगे कुछ बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं वो कल बताएंगे आपको।